मालदीव की आजादी पर मंडराया खतरा, पर कोई भी देश आगे नहीं आया। राष्ट्रपति गयूम की आखिरी उम्मीद थी भारत। क्या हमारे जांबाज विदेशी धरती पर अपना पहला सैन्य अभियान पूरा कर पाए? जानने के लिए सुनिए ऑपरेशन कैक्टस की ये रोमांचक कहानी। ऐसी ही कई भारतीय सेना की शौर्य गाथाएं सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.navbharatgold.com पर।
दिल्ली में अगर कोवैक्सीन, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी की जा रही है कि वो भारत की बनी हुई है, उसका स्टेज 3 ट्रायल नहीं हुआ है, इस तरह के भ्रांतियां फैला करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूँ कि एम्स में जितने भी लोगों को वैक्सीन लगी है, सबको कोवैक्सीन लगी है, इंडिया में बनी।
कोरोना वैक्सीन से जुड़ी आशंकाओं पर यह कहना है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का, जो फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, आज है बुधवार 20 जनवरी और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता आज। वहीं ट्रैक्टर मार्च रोकने के लिए आंदोलनकारियों को राजी नहीं कर पाई पुलिस। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर। इस बीच किसानों के समर्थन में 30 जनवरी से भूख हड़ताल करेंगे अन्ना हजारे। अमेरिका में जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह आज। हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने विदाई भाषण में अपनी उपलब्धियां गिनवाई, संसद में हिंसा को अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ बताया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपराध। अदालत ने कहा इस तरह के संबंधों को बढ़ावा देने का मतलब जुर्म को बढ़ावा देना। एक अन्य फैसले में अदालत ने सड़क चौड़ी करने के दौरान पेड़ों को गैर कानूनी तरीके से काटने पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब। आज से 6 देशों को कोरोना वैक्सीन भेजेगा भारत। इनमें भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स का नाम शामिल। भूटान को मुफ्त में मिलेगा टीका। बांग्लादेश को 20 लाख फ्री डोज का तोहफा देगी सरकार। जरूरी मंजूरी मिलने के बाद श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी दी जाएगी वैक्सीन। अब खबरें काम की। जेईई मेन में हटाई गई 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया फैसला। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने दोहराया, गर्भवती महिलाएं और बुखार जुकाम वाले लोग ना लगवाएं टीका। खून से जुड़ी बीमारी वाले मरीजों को भी वैक्सीन लगवाने की मनाही। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी आशंकाएं। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से।
देश में जब कोरोना के 2 टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली तो सबके मन में यही सवाल था कि मेरा नंबर कब आएगा। वैक्सीन लगनी शुरू हो गई तो अब सवाल उठ रहे हैं कि इनके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स तो नहीं। हालांकि शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स को ही टीके लगाए जा रहे हैं, पर लोगों का डर दूर करने के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फैक्ट शीट जारी करनी पड़ी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र, कई जगह से खबरें आई हैं कि टीका लगवाने से लोग हिचक रहे हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर्स में क्या डर है जो वो टीका लगवाने आगे नहीं आ रहे?
देखिए, ये कहना कि लोग हिचक रहे हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। पूरे कंट्री के अगर डेटा उठा के देखें, जिस दिन पहली बार टीकाकरण का प्रोग्राम चालू हुआ था, आज से 2 दिन पहले, तो उस समय पूरे देश में करीब करीब 44-45% का टीकाकरण हुआ था, और जो अगर आज देखें तो इन टोटल पूरे कंट्री में बढ़ा ही है। तो ये कहना कि लोग संकोच कर रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता।
जी, हालांकि कई जगह से ऐसी खबरें आई, दिल्ली में ही आया कि काफी संख्या में लोग नहीं आए। तमिलनाडु में कई जगह लोगों ने मना कर दिया, खासतौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स की अगर बात करें, तो अगर इससे जुड़े लोग ही आगे नहीं आ रहे हैं तो आम आदमी के मन में विश्वास कैसे जगेगा?
मैं इसी बात से शुरू करता हूँ। आपने दिल्ली और तमिलनाडु का नाम लिया। दिल्ली में अगर कोवैक्सीन, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी की जा रही है कि वो भारत की बनी हुई है, उसका स्टेज 3 ट्रायल नहीं हुआ है, इस तरह के भ्रांतियां फैला करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूँ कि एम्स में जितने भी लोगों को वैक्सीन लगी है, सबको कोवैक्सीन लगी है, इंडिया में बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगी है, और जिसका सो कॉल्ड ऑफिशियली स्टेज 3 ट्रायल नहीं आया है। तो एम्स से बड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अगर वहां के डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर और स्टाफ ने उसको खुद लगवाया है, तो पूरे देश की जनता ये समझ सकती है कि उसकी रिलायबिलिटी का क्या आलम है। अब दूसरी बात आप तमिलनाडु की कर रहे हैं। तमिलनाडु में मैं इस बात से एग्री करता हूं कि पहले दिन वहां पे वैक्सीनेशन नहीं था, पर पहले दिन से लेके अगर आज तक के ट्रेंड देखे जाए तमिलनाडु में, पहले दिन शायद 22-25% तक हुआ था, उसके बाद 35 हुआ है, और आज की खबर मैं आपको दे रहा हूँ 44% के आसपास तमिलनाडु में वैक्सीनेशन हुआ है। इन दो स्टेट की बात आपने की, अब मैं आपको एक और स्टेट की बात बताता हूँ, उड़ीसा की बात बताता हूँ। उड़ीसा में वैक्सीनेशन 100% से ज्यादा हुआ है। रीजन, इसका जो रीजन मैंने एनालाइज करके निकाला है कि कुछ जगह जहां पर जो वैक्सीनेशन का जो प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वो प्लेटफॉर्म प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी दिक्कत हो रही है एडजस्ट करने में। तो इसको बाईपास करते हुए उड़ीसा सरकार ने उस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को हटा करके ओरल मैनुअल सिस्टम शुरू किया है, और अगर 100 लोगों का नंबर है तो उन्होंने 125 लोगों को बुलाया है, तो जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज के डेट में वहां पे 102 लोगों का, 100 लोगों का नंबर था और 102 लोगों को टीका लगा है। तो सिर्फ एकाध जगह की बात करके पूरे देश के स्टेटिस्टिक्स को उससे सिंबलाइज नहीं करना चाहिए, ये उसका पर्याय नहीं होता है। हमें पूरे देश को एज ए होल देखना चाहिए, और एज ए होल अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में टीकाकरण का रेट और परसेंट हेल्थ केयर वर्कर में बढ़ रहा है और जो आगे बढ़ेगा।
जी, हमने देखा कि अगर करीब 4 लाख लोगों को टीका लगा था तो मात्र 600 में ही हल्के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, तो किस तरह के साइड इफेक्ट्स अभी तक देखने में आ रहे हैं?
देखिए, साइड इफेक्ट की जब भी बात की जाती है तो ये समझ लीजिए कि साइड इफेक्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होता। साइड इफेक्ट कभी नॉर्मल होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं। तो लोग जो साइड इफेक्ट के नाम में नेगेटिव की बात करते हैं वो गलत है। जो नॉर्मल साइड इफेक्ट होता है, जिसको साइड इफेक्ट कहे, मैं कहता हूँ एसोसिएटेड इफेक्ट कहे, कि जहां पे टीका लगता है, कोई भी इंजेक्शन जहां लगता है वहां टेंडरनेस होती है, लगने से 24 से 48 घंटे तक माइल्ड सा फीवर रहता है वो होता है, थकान फटीग लगती है वो होता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये सिम्टम आप में है, यानी कि अगर आपको बुखार आ रहा है, आपको थोड़ी सी थकान लग रही है अगर 24 से 48 घंटे तक, तो ये बताता है कि टीका कारगर है और बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंट मेटाबोलाइट और डिफरेंट केमिकल्स, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस वगैरह बॉडी में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम आते हैं, और ये वैक्सीन की इफिकेसी का एक एग्जाम्पल है, ना कि उसका नेगेटिव पॉइंट है।
जी, तो लोगों का ये डर या संदेह कैसे दूर किया जाए? वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने जो फैक्टशीट जारी की है उनमें क्या सलाह दी गई है?
देखिए, जो हाँ, इसकी बात ये कहूंगा कि आज काफी सारे अखबारों में इस तरह की शीट निकली हुई है कि किस में देना है, किस में नहीं देना है। मैं इसी की बात करता हूं। अगर इस कोवैक्सीन को छोड़ दिया जाए, दिल्ली में और देश में बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट यूज करते हैं, वो गूगल पे जाके देख सकते हैं कि व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेशन फॉर यूजेज ऑफ एनी वैक्सीन, तो उसमें 3 कंट्रा इंडिकेशन हर वैक्सीन में दिए गए हैं। एक एलर्जी या एनाफाइलेक्सिस, दूसरी अगर सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी है, यानी कि जिसके अंदर बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है, और तीसरी प्रेगनेंसी। कोई भी वैक्सीन बिना लॉन्ग टर्म ट्रायल के कभी भी नहीं दी जाती इन 3 कैटेगरीज में। और एक चौथी चीज जो लिखी हुई आ रही है, बताया जा रहा है कि वो लोग, वो मरीज जो ब्लड थिनर्स का यूज करते हैं, इसने बहुत बड़ा कंफ्यूजन कर दिया, क्योंकि ब्लड थिनर पे हिंदुस्तान में बहुत सारे मरीज हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, कार्डियक डिजीज है। तो ये समझ लीजिए कि ब्लड थिनर का मतलब जो एस्पिरिन आप ले रहे हैं वो नहीं है। अगर आप हेपेरिन ले रहे हैं या सीवियर कोई एंट्री कोगुलेंट के लिए दवा ले रहे हैं उसके लिए कहा जा रहा है, ना कि नॉर्मल ब्लड थिनर के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक चीज और देख सकते हैं गूगल करके कि व्हेन इंजेक्शन शुड नॉट बी गिवन, यही गूगल करिए तो उसमें यह लिखा गया कि अगर पेशेंट को कोई एंटी कोगुलेंट डिसऑर्डर है या वो किसी खून पतला करने वाली मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है, ये दो चीजें किसी भी इंजेक्शन को कॉन्ट्राडी इंडिकेट करती हैं। तो इसको सिर्फ इस वैक्सीन के साथ कोरिलेट करना गलत जानकारी पहुंचाने के बराबर है। तो मैं बहुत साफ करना चाहूंगा कि कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता अगर एंटी कोगुलेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है या पेशेंट ब्लड थिनर स्ट्रांग ले रहा है। एस्पिरिन जैसा ब्लड थिनर जो बहुत ही कॉमनली यूज किया जा रहा है उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है।
सरकार का रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, हालांकि शुरुआती 3 दिनों में हमने देखा कि करीब 4 लाख लोगों को ही टीका लग पाया। तो एडवर्स इफेक्ट के डर की वजह से लोग कम लगवा रहे हैं या कम टीका लगने की कुछ और भी वजह आई है सामने?
देखिए, अभी जो टीकाकरण हो रहा है वो हेल्थ केयर वर्कर में हो रहा है। हेल्थ केयर वर्कर जो अभी तक सबसे ज्यादा कोरोना के लिए एक्सपोज था, हो क्या रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स में ऑलरेडी कोरोना हो चुका है और हो करके उनमें अपने आप एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। क्योंकि ये लोग इस सब्जेक्ट को जानते हैं तो पहले अपनी एंटीबॉडीज चेक कर रहे हैं, अगर उनमें एंटीबॉडीज ज्यादा हैं तो वो लोग खुद ही वैक्सीन लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं। दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन, जैसे कि दिल्ली में देखें कि कोरोना काफी तेजी से कम होता जा रहा है, तो लोगों में एक ये भी हो रहा कि जब कोरोना कम हो रहा तो वैक्सीन क्यों लगाएं, ठीक। और वो डॉक्टरों में एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है कि चूंकि मेजॉरिटी लोग इन्फेक्ट होकर के एनवायरनमेंट से उनको इम्यूनिटी मिल गई है तो वो इस वजह से शायद कम लगवा रहे हैं। और सबसे बड़ी मेजर वजह जो मैं समझता हूँ, डॉक्टर हूं लेकिन इस पे जो होने वाली पॉलिटिक्स है वो सबसे बड़ी वजह है। लोगों में कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है और पढ़े लिखे लोग जिनमें इंटरनेट की एसेस और गूगल नॉलेज ज्यादा है वो ज्यादा कंफ्यूज हैं। मेरे बहुत सारे पढ़े लिखे मित्र हैं जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि क्या लगाना चाहिए, तो वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करने लगते हैं कि कोवैक्सीन में ये नुकसान है, दूसरी वैक्सीन में ये पॉजिटिव है, तो मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ जबकि वो पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा कंफ्यूज हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड लेमैन।
लेकिन आपको लगता है कि कंफ्यूजन की जो ये स्थिति है उसे जल्द दूर किया जाना जरूरी है, क्योंकि अभी तो कोविड 19 के केसेस की संख्या तेजी से कम हो रही है, लेकिन इसका जो नया स्ट्रेन है अगर वो फैलने लगता है तब टीके को लेकर ऐसी अविश्वास की स्थिति खतरनाक हो सकती है।
मैं इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक मुझे ब्राजील में एक जगह है, वहां पे सारी कम्युनिटी में 80% लोगों का कोरोना हो चुका था, तो उन्हें यह लगा कि चूंकि 80% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं तो वहां पर हर्ड इम्यूनिटी आ गई होगी, लेकिन वहां पे दोबारा दूसरे स्ट्रेन का हमला हुआ है और अभी इस समय वहां के हॉस्पिटल दोबारा भर गए हैं। तो जो हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पे इंग्लैंड चलने की कोशिश कर रहा था और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने ब्राजील में देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। अभी हमारे पास एक ही अवेलेबल प्रॉमिसिंग ऑप्शन है, वो है वैक्सीन, और मुझे लगता है कि वैक्सीन सभी को लगानी चाहिए। और ये सबसे ज्यादा हमारी एज ए डॉक्टर, आपकी एज ए मीडिया और हम सबके जो नेता हैं पॉलिटिशियन हैं वो अपनी पॉलिटिक्स छोड़ करके अगर देश के बारे में सोचें तो उन्हें जागरूक करना चाहिए अपनी जनता को लगाने के लिए, वही सबसे बेहतर होगा।
डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। बढ़त के साथ खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में गिरावट का रुख, कल तेज उछाल के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया, 1988 में स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान का निधन, 2018 में नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता। बात करते हैं मौसम की। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी, 21 जनवरी से राहत मिलने के आसार। वहीं अगले 48 घंटों में यूपी, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। अब बारी सुविचार की। अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का वक्त मिले तो 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में खर्च करना चाहिए। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।